एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
संगीत की हल्की धुन।
नमस्कार, आज हम बात करेंगे झुम्पा लाहिरी की पुरस्कृत कृति इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज पर।
जी, ये कोई एक उपन्यास नहीं है।
हाँ, ये 9 कहानियों का एक संग्रह है और इसे सन 2000 में पुलित्जर पुरस्कार मिला था, जो कि बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल, लाहिरी जिनकी परवरिश तो अमेरिका में हुई पर जड़ें बंगाल से जुड़ी हैं। वो अपनी कहानियों में उन लोगों की दुनिया रचती हैं जो मतलब दो संस्कृतियों के बीच, दो देशों के बीच अपनी पहचान खोज रहे हैं।
और ये जो खोज है वो बहुत ही शांत और गहरी है। मैंने पढ़ा है कि उनकी शैली को क्वाइट रियलिज्म या शांत यथार्थवाद कहा जाता है।
सही बात है, इसका मतलब है कि जिंदगी के जो बड़े बड़े तूफान हैं वो भी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में सिमटे हुए लगते हैं।
बिल्कुल, और संग्रह का शीर्षक ही देखिए, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज, यानी रोगों का दुभाषिया।
हाँ, ये सिर्फ शारीरिक रोगों की बात नहीं है।
नहीं, ये तो मन के मर्जों की बात है, वो मर्ज जिन्हें हम नाम नहीं दे पाते, जैसे अकेलापन या विस्थापन का दर्द
या रिश्तों में आती खामोशी है।
तो चलिए आज कुछ प्रमुख कहानियों के जरिए इस संग्रह के दिल में उतरने की कोशिश करते हैं। तो शीर्षक से ही शुरू करें, रोगों का दुभाषिया। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली रूपक मतलब मेटाफर है।
हाँ, ये हमें बताता है कि हर किरदार किसी न किसी तरह से अपनी या दूसरों की पीड़ा को समझने और समझाने की कोशिश कर रहा है,
और अक्सर ये कोशिश नाकाम हो जाती है।
ज्यादातर
संवाद और संवादहीनता मतलब कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन, यही इस पूरे संग्रह का केंद्र है। पात्र बात तो करते हैं पर क्या वो एक दूसरे को सच में समझ पाते हैं?
अच्छा,
यही सवाल हमें पहली ही कहानी ए टेम्पररी मैटर में मिलता है।
हाँ, शोभा और सुकुमार की कहानी। जी, एक युवा जोड़ा है जिन्होंने हाल ही में अपने बच्चे को जन्म के समय खो दिया है और अब एक ही घर में अजनबियों की तरह जी रहे हैं।
उनके बीच एक गहरी खामोशी की दीवार सी खड़ी हो गई है।
फिर उनकी जिंदगी में एक भारी घटना होती है।
वो बिजली कटौती वाली बात है ना?
हाँ, उनके इलाके में एक हफ्ते के लिए हर शाम 1 घंटे बिजली कटने की घोषणा होती है और वही अंधेरा उनके रिश्ते के लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है।
ये बहुत दिलचस्प है।
जी, उस अंधेरे में वो एक खेल शुरू करते हैं,
एक दूसरे को राज बताने वाला खेल।
बिल्कुल, वो राज जो उन्होंने कभी नहीं बताए। शुरुआत तो छोटी छोटी बातों से होती है पर धीरे धीरे वो अपने सबसे गहरे और दर्दनाक सच साझा करने लगते हैं।
तो ऐसा लगता है कि उस अंधेरे ने उन्हें वो जबान लौटा दी है जो रोशनी में कहीं खो गई थी।
हाँ, एक पल के लिए उम्मीद जगती है कि शायद शायद सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन कहानी का शीर्षक एक अस्थाई मामला, ये खुद में एक इशारा है।
सही बात है, ये जुड़ाव भी अस्थाई ही साबित होता है। कहानी का अंत तो दिल तोड़ने वाला है। अंधेरे में कही गई सच्चाइयां उन्हें करीब लाने के बजाय ये एहसास कराती हैं कि उनके बीच की दूरी अब कभी नहीं भर सकती।
आखिरी रात जब सुकुमार अपना सबसे दर्दनाक सच बताता है
तो शोभा भी अपना आखिरी सच सामने रखती है कि उसने एक नया अपार्टमेंट ढूंढ लिया है और वो उसे छोड़कर जा रही है।
और वो अंतिम पंक्ति, वे एक साथ रोए उन बातों के लिए जो वे अब जानते थे।
मतलब यहाँ संवाद एक दोधारी तलवार की तरह है
जो जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। अब आते हैं उस कहानी पर जिसने संग्रह को अपना नाम दिया,
इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज।
ये कहानी तो गलत फहमी यानी मिस इंटरप्रिटेशन की थीम को अपने चरम पर ले जाती है। इसके मुख्य पात्र हैं मिस्टर कपासी,
जो एक टूर गाइड हैं और साथ ही एक डॉक्टर के लिए दुभाषिये का काम भी करते हैं।
और मिस्टर कपासी अपनी जिंदगी से कुछ खास खुश नहीं है, है ना? उनकी शादी में प्यार नहीं बचा है।
नहीं, पर उन्हें अपने दुभाषिये के काम पर बहुत गर्व है, वो इसे एक कला मानते हैं।
कहानी तब शुरू होती है जब वो दास परिवार को कोणार्क का सूर्य मंदिर घुमाने ले जाते हैं।
दास परिवार जो अमेरिका से आए भारतीय हैं
और वो मिसेस दास के प्रति आकर्षित हो जाते हैं।
जी, और उन्हें लगता है कि मिसेस दास भी उनके इस रोमांटिक पेशे में गहरी रुचि ले रही हैं।
वो अपने मन में एक खूबसूरत रिश्ते की कल्पना करने लगते हैं,
एक ऐसा रिश्ता जहां कोई उनके काम की गहराई को समझेगा।
और विडंबना देखिए, जो व्यक्ति भाषाओं का अनुवादक है
वही भावनाओं और इरादों को समझने में पूरी तरह चूक जाता है।
बिल्कुल, कहानी का मोड़ तब आता है जब मिसेस दास अकेले में उन्हें अपना एक गहरा राज बताती हैं
कि उनका एक बेटा उनके पति से नहीं बल्कि किसी और से है
और वो मिस्टर कपासी से कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं चाहती।
नहीं, वो तो बस अपने अपराध बोध का एक आसान सा इलाज चाहती हैं, जैसे कोई डॉक्टर से दवा मांग रहा हो।
ये सुनकर तो मिस्टर कपासी का पूरा भ्रम टूट जाता है,
पूरी तरह से,
और कहानी का अंत इस टूटे हुए भ्रम का प्रतीक बन जाता है।
वो कागज वाला सीन,
हाँ, जब दास परिवार का बेटा बंदरों के हमले का शिकार होता है तो उस अफरा तफरी में मिस्टर कपासी का पता लिखा कागज मिसेस दास के पर्स से उड़कर हवा में खो जाता है,
और उस कागज की तरह ही उनके बीच एक गहरे रिश्ते की जो संभावना थी
वो भी हवा हो जाती है।
लहरी सिर्फ पति पत्नी के रिश्तों को ही नहीं बल्कि पीढ़ियों के बीच की समझ को भी बड़ी खूबसूरती से दिखाती है।
हाँ, जैसे कहानी व्हेन मिस्टर पिरजादा केम टू डाइन में।
ये कहानी एक छोटी बच्ची लिलिया की आंखों से कही गई है
जो अमेरिका में पली बड़ी है। बात है सन 1971 की, जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था,
और मिस्टर पिरजादा जो ढाका के एक विद्वान है वो लिलिया के परिवार के यहाँ रात के खाने पर आया करते हैं।
लिलिया के लिए भारत पाकिस्तान का बंटवारा और युद्ध, ये सब मतलब किताबी बातें हैं।
लेकिन हर शाम जब वे टीवी पर खबरें देखते हैं तो वो मिस्टर पीरजादा की आंखों में अपने परिवार के लिए गहरी चिंता और दर्द महसूस करती है।
तो ये कहानी दिखाती है कि पहचान और विरासत हमें कैसे मिलती है।
बिल्कुल, लिलिया के लिए मिस्टर पीरजादा का दर्द निजी हो जाता है।
वो जो कैंडी वाली बात है,
हाँ, वो हर रात उनके दिए हुए कैंडी को खाने के बजाय एक डिब्बे में जमा करती है और उनके परिवार की सलामती की प्रार्थना करती है।
ये एक बच्चे का दुनिया की त्रासदियों को समझने और उनसे जुड़ने का अपना तरीका है।
इस कहानी के जरिए लहरी बताती हैं कि सहानुभूति मतलब एम्पैथी किस तरह भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं को लांग सकती है।
लिलिया के लिए एक अनजान देश का दर्द उसके अपने घर की कहानी का हिस्सा बन जाता है।
अब तक हमने जो कहानियां देखी उनमें टूटे रिश्ते हैं, गलत फहमियां हैं,
हाँ, और अपनी जड़ों से उखड़ने का दर्द है। लेकिन इस संग्रह की जो आखिरी कहानी है, द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट, वो एक उम्मीद भरी तस्वीर पेश करती है।
जी, यह एक ऐसे भारतीय प्रवासी की कहानी है जो कलकत्ता से लंदन और फिर अपने तीसरे और अंतिम महाद्वीप अमेरिका पहुंचता है।
ये कहानी धीरे धीरे एक नई जमीन पर जड़े जमाने की है।
कहानी का नायक शुरुआत में बहुत अकेला है, उसकी शादी भी अरेंज मैरिज है, और जब उसकी पत्नी माला अमेरिका आती है
तो उनके बीच एक अजीब सी खामोशी और औपचारिकता होते हैं।
लेकिन उनके रिश्ते में मोड़ कोई बड़ी घटना नहीं लाती।
नहीं, बल्कि बहुत छोटे छोटे पल लाते हैं, जैसे अपनी बूढ़ी मकान मालकिन मिसेस क्रॉफ्ट की अजीब आदतों पर एक साथ हंसना।
और यही इस कहानी की खूबसूरती है ना?
हाँ, ये दिखाती है कि एक नया घर और एक नया रिश्ता बनाने के लिए धैर्य, समय और छोटी छोटी कोशिशें लगती हैं।
ये नायक अपनी भारतीय पहचान को बनाए रखते हुए सफलतापूर्वक अमेरिकी समाज का हिस्सा बन जाता है।
वो अपनी यात्रा को याद करते हुए कहता है, कभी कभी मैं हैरान रह जाता हूँ हर उस मील पर जो मैंने तय किया है,
हर उस भोजन पर जो मैंने खाया है, हर उस इंसान से जिस समय मिला हूँ। ये कहानी अप्रवासी अनुभव के उस पहलू को छूती है जहाँ संघर्ष के बाद एक शांत संतोष और अपनेपन का एहसास होता है। ये एक मुकम्मल सफर की दास्तान है।
तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज हमें दिखाती है कि पहचान और रिश्तों की दुनिया कितनी जटिल है,
और लहरी की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हर कोई किसी न किसी तरह अपनी और दूसरों की पीड़ा का अनुवादक है,
और ये भी कि जीवन के सबसे गहरे जुड़ाव और सबसे बड़े गलतफहमियां अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी के शांत और अनकहे क्षणों में ही जन्म लेती हैं। संगीत की हल्की धुन। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।